વસુદેવસુતં દેવં કંસચાણુરમર્દનમ
વસુદેવસુતં દેવં કંસચાણુરમર્દનમ
દેવકી પરમાનંદં કૃષ્ણં વંદે જગતગુરું
દેવકી પરમાનંદં કૃષ્ણં વંદે જગતગુરું
મજો વિસન્ન વ્યયાત્મા ભૂતાનામીશ્વરોપી સન
અજોપિ સન્ન વ્યયાત્મા ભૂતાનામીશ્વરોપિ સન
પ્રકૃતિં સ્વમુધિષ્ઠાય સંભવામ્યાત્મમાયયા
પ્રકૃતિં સ્વમધિષ્ઠાય સંભવામ્યાત્મમાયયા
યદાયદાયિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત
યદાયદાયિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત
અભ્યુત્થાનમધર્મસ્ય તદાત્માનં સૃજામ્યહ
અભ્યુત્થાનમધર્મસ્య તદાત્માનં સૃજામ્યહ
પરિત્રાણાય સાધુ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતાં
પરિત્રાણાય સાધુનાં વિનાશાય ચ દુષ્કૃતાં
ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે
ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે
જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્ય મેવં યો વેતિ તત્ત્વતા
જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્ય મેવં યો વેતિ તત્ત્વતા
ત્યક્ત્વા દેહં પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સોર્જુન
ત્યક્ત્વા દેહં પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સોર્જુન વીત રાગ ભયા
ક્રોધા મન્મયા મામુપાશ્રિતા વીત રાગ ભયા ક્રોધા મન્મયા મામુપાશ્રિતા બહવો જ્ઞાન તપસા પોતા મદભાવમાગતા
બહવો જ્ઞાન તપસા પોતા મદભાવમાગતા
વસુદેવસુતમ દેવમ કંસચાણુરમર્દનમ
વસુદેવસુતમ દેવમ કંસચાણુરમર્દનમ
દેવકી પરમાનંદં કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરું
દેવકી પરમાનંદં
કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરું કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરું
ઓ
કૃષ્ણં વંદે जगत गुरु
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरार हे नाथ नारायण वासुदेव श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
सद्गुरु प्रणम्य पुनि सब संत नमो हरि रामा मुर भवन में या पद समान को अधम जीव तुम तारिया तुम ही तारे संत अब कृपा मो पर करहु यो हरिदेव कहंत सदगुरु से ती विनती पर ब्रह्म सु परणाम अनंत कोटि संत रामदास निसदिन करूं सलाम नमो राम गुरुदेव जी धनत्रिकाल के वंद विघ्न हरण मंगल करण रामदास आनंद भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुवे तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न याने स्वर्गाश्रम वटवृक्ष प्रातःकाल 6/4/44 जेठ सुधी 13 संवत 2001 ध्यान से भगवत प्राप्ति। गीता जी के 12वें अध्याय की बात स्वामी जी ने बहुत अच्छी बताई। उसके अनुसार साधन करने से भगवान की प्राप्ति सहज में ही हो सकती है। आपने तो एक ही काम करना है, भगवान का अनन्य चिंतन। भगवान ने ये बात कही है, मैं शीघ्र ही उद्धार कर देता हूं। किसका? जो मेरा ध्यान करे उसका। ध्यान में कोई शर्त है? कोई शर्त नहीं। ध्यान में कोई शर्त भगवान ने लगाई नहीं, केवल ध्यान करो, भगवान उद्धार करने को तैयार। ये मौका बड़ा अच्छा है। इस जगह ध्यान तो अपने आप ही लग जाना चाहिए। ध्यान में वैराग्य और चित्त की प्रसन्नता, ये दो बड़ी सहायक होती है। दोनों ही चीज यहां मौजूद है। चारों तरफ दृष्टि डालने से वैराग्य होता है। पहाड़ वन ये तो अपने आप ही वैराग्य पैदा करते हैं। गंगा का तट, वृक्ष की छाया, ये शांति पैदा करने वाले हैं। तो वैराग्य भी यहां स्वाभाविक, शांति भी स्वाभाविक, भूमि भी बड़ी बड़ी पवित्र, भगवान की विशेष दया की हवा भी बड़ी पवित्र। पवित्र भूमि, एकांत देश, हवा, गंगा जी की शांति, वन और पहाड़, ये वैराग्य उत्पन्न करने वाले हैं। यहां ध्यान के व्याख्यान की जरूरत ही नहीं है। यहां तो इतना ही ध्यान हो जाए वही पर्याप्त है कि निराकार रूप से भगवान विराजमान है। यदि हमारे में प्रेम हो तो साकार रूप से प्रकट हो सकते हैं। वैसे भी आप अपने जीवन में जब आपको कोई शांति मिलती हो, खूब आनंद का अनुभव होता हो, जहां समता का अनुभव होता हो, प्रसन्नता का अनुभव होता हो, ये भगवान का ही तो निराकार रूप है। शांति, आनंद, समता, प्रसन्नता, ये भगवान को छोड़कर थोड़ा ही है। एक ही चीज का नाना भाव माया के संबंध से प्रतीत होता है। जैसे आकाश से बरसा हुआ वही जल सीपी में पड़ने से तो मोती होता है, सांप के मुख में पड़ने से जहर होता है और आम पर पड़ने से रस हो जाता है, इसी प्रकार परमात्मा का एक ही रूप होता है। वो जड़ वर्ग के संबंध से अलग अलग भेद वाला दिखता है। रेडियो, लोटिया, पंखा सब में बिजली तो एक ही है, परंतु रेडियो का काम बोलने का है, लोटिया का काम प्रकाश का है, पंखा का काम हवा का है, तो ये अपने काम अलग अलग है, बिजली तो एक ही है। एक ही तार से रेडियो चलता है, उसी तार से लोटिया जगता है, उसी से पंखा चलता है। इसी प्रकार परमात्मा एक है, वे ही माया के संबंध से नाना रूप से प्रतीत होते हैं। यह प्रकृति जो है यह भी जब असली रूप में होती है तब एक ही होता है, किंतु जब विकारों को प्राप्त होती है तो अनेक रूप प्राप्त होने लगते हैं। मूल में एक चीज है और वो एक परमात्मा ही है। वही परमात्मा गुणों के संग से सगुण हो जाते हैं, गुणों से रहित निर्गुण होते हैं। प्रेम, समता, ज्ञान, आनंद ये सब गुण है। वस्तु से, धातु से परमात्मा एक है। जैसे सोना एक होता है, अलग अलग आभूषण होने से अलग अलग दिखता है, इसी प्रकार एक ही परमात्मा निराकार रूप से सब जगह होता है, गुणों के संग से साकार रूप प्रकट होता है, तब वे आंखों से भी दिखने लगते हैं। प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं, इसलिए भगवान से प्रेम करना चाहिए। प्रेम के तत्व को केवल भगवान ही जानते हैं। जो संसार के स्वार्थी आदमी हैं वे प्रेम को क्या जानेंगे, उनके तो सबसे बड़ा अपना स्वार्थ है। स्वार्थ से बढ़कर कोई गंदी चीज नहीं है। स्वार्थी आदमी में दुर्गुणों का कोई ठिकाना ही नहीं है, सारा अवगुण स्वार्थ मूलक है। जितना अवगुण दुनिया में है सबका मूलक स्वार्थ है। बच्चा मेले में हाथ दे देता है तो माँ उससे घृणा करती है, धोकर साफ करती है, फिर हृदय लगाती है। इसी प्रकार हम भी मेले स्वार्थ रूपी मेले से भरे पड़े हैं। भगवान अपने को धो धो करके हृदय से लगाते हैं। माँ तो जल ले आती है, भगवान कौन से जल से धोते हैं? भगवान के लिए धोने का जल है भगवान का भजन ध्यान। भजन ध्यान करने से चित्त शुद्ध होता है। कोई कोई लड़का लतपत हो जाता है मेले में तो माँ उसे स्नान कराती है, शुद्ध हो जाने से हृदय लगाती है। यह स्नाति मानसे तीर्थे सयाति परमांगतिम। परमात्मा के स्वरूप का जो ज्ञान है यह एक तालाब है। परमात्मा के स्वरूप का ध्यान है वो जल है। देखो ज्ञान तालाब है, परमात्मा का ज्ञान है ये तालाब है। ध्यान है उसमें जड़ है और राग और द्वेष से रहित जो ध्यान है वो मल रहित जल स्वच्छता है वो जल की। ऐसे परमात्मा का ध्यान है उसमें अपने चित्त को खूब दहलाना चाहिए। हमारा मन है यही मान सरोवर है, इसमें खूब स्नान करो। इस मान सरोवर में जल भरा पड़ा है यही भगवान का ध्यान है, उसमें डुबकी लगाते रहो। जैसे जल में डुबकी लगाने के बाद आदमी ऊपर आता है फिर डुबकी लगाता है, ऐसे ही यदि चित्त कहीं चला जाए तो ऐसा समझो कि अभी हम डुबकी लगा करके ऊपर उठे थे, वापस डुबकी लगा लो। फिर यदि ऊपर तो वापस डुबकी लगा लो। ऐसे जैसे गंगा जी में लोग कई एक एक हजार दो दो हजार डुबकियां रोज लगाते हैं, ऐसे आप कितनी डुबकियां हजार दो हजार डुबकी रोज परमात्मा रूपी जल में डुबकी लगाओ तो देखो थोड़े दिनों में आपकी क्या दशा होती है। थोड़ी थोड़ी में डुबकी लगाओ भगवान में परमात्मा में। भगवान कहते तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। अर्जुन उन मुझमें चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का शीघ्र ही मृत्यु संसार समुद्र से उद्धार कर लेता हूं। इस श्लोक में कही है वह यही बात है, परमात्मा को तो ध्यान करे उसका परमात्मा उद्धार कर दे। तालाब में स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। यहां उत्तराखंड का मान सरोवर है उसमें स्नान करने का बड़ा महात्म्य है, किंतु हृदय रूपी मान सरोवर में स्नान करने से जो आनंद होता है वो अलग ही है, उससे तुरंत कल्याण हो जावे। अठे जो स्नान करे है स्नान कर मैं न पूछे कि थारे के फर्क पड़े हो तो मैं बोले कि मैं तो पहले जैसा ही हाँ। इको फल तो माने मरने के बाद मिलेगो, किंतु मान सरोवर रूपी अंतःकरण रूपी मान सरोवर में स्नान करने को फल तुरंत मिले, इसलिए हमें इस सरोवर में स्नान करना चाहिए। चाहे तो सगुण साकार रूप का ध्यान करें, नहीं हो सके तो निराकार का ध्यान करें। आप विचार करो परमात्मा सब जगह मौजूद है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, हम परमात्मा में तो डूबे हुए हैं ही। वह परमात्मा हमारे नीचे ऊपर मौजूद है और हम डूबे हुए हैं तो ध्यान की जो चीज होनी चाहिए वो तो हो ही रही है, केवल पहचानना मात्र है। पानी तो हमारे गोड़े तक है, कमर तक है, या हमारे सिर तक है, सिर से ऊपर भी है, पर भगवान के समान व्यापक थोड़ा ही है। भगवान निराकार सगुण निराकार का ध्यान असली ध्यान है, निर्गुण निराकार का तो ध्यान हो ही नहीं सकता। अल्लाह जो ध्यान होता है वो या तो साकार या सगुण निराकार का। निर्गुण तो लक्ष्य ही नहीं, निर्गुण तो लक्ष्य में आ ही नहीं सकता। सगुण निराकार का जो ध्यान होता है उसी को ही निर्गुण निराकार का ध्यान मानते हैं। सगुण साकार का ध्यान नहीं हो तो कोई आपत्ति नहीं है। भगवान से कह दो हे भगवान हम लाचार हैं, क्योंकि आपने सगुण साकार रूप से हमको दर्शन दिया नहीं, इसलिए हम आपके रूप का ध्यान कर सकते नहीं, हम विवश हैं, लाचार हैं, परंतु हम सगुण निराकार का ध्यान कर सकते हैं। आकाश जिस तरह सब जगह व्यापक है, परमात्मा इसी प्रकार व्यापक है। आकाश में पोल ही पोल है और भगवान ठोस ही ठोस है। ठोस होकर भी जड़ नहीं है, आनंद घन है। या यूं कहिए कि ज्ञान घन है, ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान की इतनी अधिकता है कि दूसरी वस्तु की गुंजाइश ही नहीं है। कहते हैं जब वो आनंद घन है तो वो ज्ञान घन है, तो ये कैसे बात होती है? तो कहते हैं जो ज्ञान है वो आनंद को छोड़ करके नहीं है। इस प्रकार समझकर ध्यान करना है, वो निराकार का ध्यान है। अपने समझना चाहिए कि आनंद यहां बाहर भीतर सब जगह परिपूर्ण है। जिस प्रकार कहा है कि बहिरंतश्च भूतानाम अचरं चरम एव च सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम् दूरस्थम चांतिके च तत्। वह परमात्मा सारे भूत प्राणियों में बाहर भीतर परिपूर्ण है। कभी कभी आपको जो शांति का अनुभव होता है वो आनंद का ही एक रूप है। शांति आनंद से कोई भिन्न थोड़ा ही है। वह आनंद ही प्रेम के रूप में प्रादुर्भाव होता है। इसलिए प्रेम भगवान से दूसरी चीज नहीं है। इसलिए प्रेम की जितनी प्राप्ति हो गई उतनी भगवान की प्राप्ति हो गई। यही प्रेम तत्व है। प्रेम भगवान का स्वरूप है। हम लोगों को जो प्रेम प्रतीत होता है वो माया से मिला हुआ है, जड़ है। किंतु परमात्मा के स्वरूप का जो प्रेम है वो चेतन है, वो जड़ नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा का जो स्वरूप आनंद है वह भी जड़ नहीं है, चेतन है। हम लोगों को जो प्रतीत होता है आह्लाद के रूप में आनंद, यह आनंद असली आनंद की झलकी मात्र है, प्रतिबिंब मात्र है। असली और नकली में फर्क होता है। जैसे सूर्य असली है और उसका चिल्का होता है वो नकली है। कहां तो सूर्य और कहां उसका चिल्का। लौकिक सुख ऐसा ही है, बिंब है सूर्य, सूर्य की ज्योतियों है असली परमात्मा का स्वरूप। सूर्य की ज्योतियों है सूर्य के समान तो है असली परमात्मा का स्वरूप। और लौकिक सुख है वह झिलकी माने प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहां पड़ता है कि बुद्धि है, यह है कांच। कांच में प्रकाश पड़ता है, काठ पत्थर में नहीं पड़ता। बुद्धि में जो प्रकाश पड़ता है वो प्रतिबिंब है। इस प्रतिबिंब से असली बिंब का पता लगाना चाहिए। यह जो नकली आनंद है उससे असली आनंद को पकड़ना चाहिए। नकली आनंद को जो हम पकड़ते हैं वो पकड़ने की चीज नहीं है। वो तो असली को जानने का एक रास्ता है। आईने में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखता है, बालक उसे पकड़ना चाहता है तो समझदार आदमी हंसता है। इसी प्रकार सांसारिक पुरुष संसार के सुख की तरफ हाथ डालते हैं और उनको सुख मिलता नहीं तो महात्माओं को बड़ी हंसी आती है। चंद्रमा का प्रतिबिंब क्षणिक है, इसी प्रकार संसार का सुख क्षणिक है। वह सुख असली सुख नहीं है। प्रतिबिंब क्या पकड़ने की चीज है या कोई भोगने की चीज है? रोटी का प्रतिबिंब पड़े तो प्रतिबिंब में दिखाई देने वाली रोटी खा लेगा? एक कुत्ता अपने मुंह में रोटी लेकर गया वो तालाब के किनारे किनारे जाने लगा। उस कुत्ते ने देखा कि एक कुत्ता और है तालाब के अंदर जो रोटी लिए जा रहा है। उसको इस बात का ज्ञान नहीं था कि मेरा ही प्रतिबिंब है। वह उस कुत्ते से लड़ने के लिए भाव भाव करने लगा तो उसकी खुद की रोटी नीचे गिर गई और वो तालाब में डूब के मर गया। ऐसे दुनिया मरती जा रही है। अपने असली चीज को, असली आनंद को लेते नहीं और प्रतिबिंब का आनंद में डूबते मर रहे हैं कुत्ते की तरह से। आईने के भीतर दिखने वाला जो प्रतिबिंब है वह तो थोड़ी देर में छिपने वाला है। इस प्रकार जो सांसारिक सुख है वो भी छिपने वाला है, काल के ओट में वो छिपता रहता है। ध्यान जनित जो सुख है वो सात्विक है, वह सुख भी प्रतिबिंब के समान है। असली सुख का पता उसी से ही लगता है। सात्विक सुख परमात्मा के स्वरूप को बताने वाला होता है। परमात्मा आनंद रूप से सब जगह विराजमान है। जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी सब जगह प्रकाश फैलाती है, इसी प्रकार परमात्मा का स्वरूप आनंदमय है, ज्ञानमय है। यह विशेषण हम लोगों की दृष्टि में है कि परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सारा विशेषण साधन अवस्था में है। परमात्मा तो एक रूप में स्थित है। वहां ये बात नहीं है कि वह परमात्मा है, मैं अनंत हूं, मैं चेतन हूं, मैं आनंद हूं, ये परमात्मा के अंदर भाव नहीं है। वहां तो जो कुछ है वो ही है और है ही है। वहां की बात को कैसे कहें, वहां कोई नाना भेद थोड़े ही है। वह तो एक रस है, एक रूप है। ये जो वास्तविक बात कही है, किंतु जहां उनके विशेषण के रूप में लक्ष्य कराया जाता है, ये जो बताया जाता है कि वो आनंद स्वरूप है, वो क्यों बताया जाता है कि सांसारिक पुरुष है उन्हें आनंद का अनुभव है। ये बताया जाता है कि लौकिक आनंद की जो वह नहीं है। लौकिक आनंद तो पैदा होता है, नष्ट होता है, पर वो नित्य है और सत्य है। ये सब विलक्षण बताने के लिए है। वहां नित्य और सत्य शब्द का भी कोई समावेश नहीं है। ये तो सब एक देशी ज्ञान है, सुख है, जड़ है, लेकिन वो एक देशी नहीं है। वो सम है, चेतन है, अनंत है, इस प्रकार का भी उसमें भाव नहीं है। सम जो कहा जाता है वो अंतःकरण का लक्ष्य करके कहा जाता है, वो वैसा भी नहीं है। हम लोग जो सत्यता नित्यता मानते हैं उससे भी विलक्षण है। मानने में आने वाले चीज बुद्धि की वृत्ति होती है, बुद्धि का कार्य होता है, वो तो जड़ है, किंतु परमात्मा उससे विलक्षण है। ऐसे परमात्मा का स्वरूप सब जगह मौजूद। परमात्मा का जो प्राप्त होता है वह तो आनंद स्वरूप बन जाता है। उसमें जो मन बुद्धि है वहां एक भाव रूप जो चीज है उसी की प्रत्यक्षता है, किंतु बुद्धि में वह आनंद समाता नहीं है। जिस प्रकार घड़े में बादल नहीं समाता, ब्रह्म अनंत, बुद्धि अल्प, लक्ष्य करने के लिए बुद्धि की शक्ति नहीं है। जितनी महिमा की जाती है वो प्रशंसा में निंदा ही है। यह तो अपरिमित है, जो बताया जाता है वो तो बहुत परिमित है। असली आनंद बुद्धि का विषय हो ही नहीं सकता, अनुभव रूप है। परमात्मा की प्राप्ति के बाद ही उसकी अनुभूति होती है। जानने वाला ही उसे जानता है, किंतु यह कहना भी बनता नहीं है। प्राप्त तो था ही, भूल थी वो मिट गई। समझाने के लिए कोई उदाहरण भी नहीं है। उदाहरण बताए जाते हैं किंतु एक अंश को ही समझाने वाले हैं। एक भाई मेले में गया, कहीं मेला लग रहा था, मेला मेले में गया, साथ में तीन लड़कों को ले गया, एक 3 वर्ष का, एक 5 वर्ष का, एक 7 वर्ष का। 3 वर्ष का लड़का रोने लग गया, तब उसे कंधे पर चढ़ा लिया, 2 को पकड़ करके रखा, आगे जाकर ज्ञान नहीं रहा कि एक कंधे पर है, रोने लग गया कि मेरे एक लड़का खो गया, एक लड़का खो गया। तीनों बच्चे बालक थे, वे समझा नहीं सके कि जी कौन खो गया, वो छोटे थे एकदम। वो अल्लाह मच गया, अगल बगल के लोग आए दौड़े दौड़े, क्यों रोते हो जी, ये क्या करे, 3 बच्चे लेकर आया था, ये 2 बच्चे तो मेरे हाथ में है, एक मेरे साथ है, एक बच्चा गुम गया। तो कहा कि कहां गुम गया, कि ये पता नहीं कहां गुम गया। लोग कहने लगे जो 7 वर्ष का, 7 वर्ष का था, इतना बड़ा था क्या? नहीं नहीं जी, इससे छोटा था। पूछा के वर्ष का था, तो कहा कि 3 वर्ष का था। पूछा कंधे पर है, इतने से बड़ा था क्या? अरे हाँ, ये कंधे वाला तो भूल गया, यही था। इसी प्रकार परमात्मा को अपने ढूंढने जाते हैं, कभी काशी, कभी प्रयाग, कभी बद्रीनारायण, कभी वहां, कभी वहां। तो वो परमात्मा आपके हृदय में बैठा है, ढूंढो। बाहर क्या ढूंढो, भजन है नहीं, राखो कार्ड राखो थे। हृदय में स्थित भगवान है, वह बाहर ढूंढने से कैसे मिलेंगे। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट है, मत्त स्मृतिर्ज्ञान अपोहनंच है, वेदैश्च सर्वैः रहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। सबके हृदय में रहता हूं, मेरे से स्मृति ज्ञान और अपोहन अपोन मन निसंदिग्धता, वो अपो जा मिट जाए। तो क्या तीर्थों में जाना, महात्माओं के पास जाना, ये हमारी भूल है क्या? महात्माओं से कहते हैं भगवान को बताओ, बद्रीनारायण जी की मूर्ति में भगवान को ढूंढते हैं, वह गलत है क्या? प्रश्न है। गलत नहीं है, ये तो उपाय है। वह लड़का जो ढूंढता था, तभी तो किसी ने बता दिया कि यह है। इसी प्रकार महात्माओं के पास जाओ, वे बता देंगे। क्या बता देंगे? उत्तर। वे प्रश्न उत्तर करके पूछेंगे, तब आप ही स्वीकार कर लेंगे, हाँ ये तो है। सुंदरदास जी कहते हैं, घर में जो धन गड़ा पड़ा है, वो बाहर किस तरह मिले। हृदय में स्थित भगवान में दिखते क्यों नहीं है, आवरण नहीं दिखते। इस बात का कैसे पता चले? आकाश में सूर्य भगवान बादलों से आच्छादित है, हमें सूर्य दिखता नहीं, सूर्य है, इस बात को आपने कैसे जाना? रोशनी है ना, इसलिए जाना। बादलों से छनकर भी रोशनी आती है, वो बता रही है कि सूर्य है। रात्रि में तो नहीं आती, कितने ही गहरे बादल हो जाओ, फिर भी रात है या दिन है, ये बात छिपी नहीं रहती है। सूर्य की गवाही रोशनी दे रही है, तो मान ले कि सूर्य है। बादल है उससे सूर्य घिरा हुआ है, तो बादल है उससे सूर्य घिरा हुआ है या तुम घिरे हुए हो? बादल की ऐसी शक्ति नहीं है कि सूर्य को घेर ले वे। तुम लोगों की छोटी दृष्टि है, बादल घेर लेते हैं। तत्व को जानने वाले लोग इस बात को जानते हैं। इस बात के लिए प्रमाण है क्या? बंबई टेलीफोन करो, वहां सूर्य दिखाई देगा। अपने ऋषिकेश में बैठे हैं, बरसात हो रही है, सूर्य उदित नहीं हुआ, सूर्य नहीं दिखता है, बंबई टेलीफोन करो कि हाँ हमारे यहां तो सूर्य दिखते हैं। तो यदि बादल सूर्य को ढक लेते तो फिर बंबई में क्यों दिखता है? इसका मतलब बादल हमारी आंखों को ढकते हैं। इसी प्रकार अज्ञान करके जिसका ज्ञान आच्छादित है वही जीव मोहित होता है। सब थोड़े ही होते हैं, हम लोगों का ज्ञान अज्ञान करके आच्छादित हो रहा है इसलिए उस परमात्मा को नहीं देख सकते। जिसका वह अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा दूर कर लिया जाता है उसका ज्ञान उस परमात्मा को प्रकाशित करता है। जिस देश में हवा ने बादल को हटा दिया वहां सूर्य दिखता ही है, बादल के स्थान में तो है अज्ञान, सूर्य के स्थान में है परमात्मा और हवा के स्थान में आत्मज्ञान। जिस सूर्य जिस प्रकार दिखने लगता है उसी प्रकार परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाता है। हम अज्ञान को किसी प्रकार से हटा दें तो परमात्मा का दर्शन साक्षात हो जाए। ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान को हटा देना चाहिए। वायु के द्वारा बादल हटा दिए गए तो सूर्य मौजूद ही है, सूर्य तो था ही, बादल के कारण दिखता नहीं था। केवल बादल को हटाना है, सूर्य को नहीं बुलाना है। हम लोगों को साधन बादल को हटाने के लिए है, अर्थात अज्ञान को हटाने के लिए है। अज्ञान हट सकता है, परमात्मा प्रकट नहीं होते हैं, पैदा नहीं होते हैं, परमात्मा तो ज्यों के त्यों हैं। परमात्मा की शरण होने से परमात्मा उस अज्ञान को हटा देते हैं। सूर्य के कोई शरण चला जाए तो सूर्य बादलों को हटाकर दर्शन दे सकते हैं। सूर्य के जो भक्त है, सूर्य तीन चार दिन नहीं दिखे, प्रार्थना करे तो सूर्य भगवान बादलों को चीरकर अपने भक्त को दर्शन दे सकते हैं। इसी प्रकार हम परमात्मा से प्रार्थना करें तो परमात्मा अज्ञान का पर्दा फाड़कर दर्शन दे सकते हैं। चाहे जितना घना पर्दा हो, सूर्य को बादल हटाने में क्या कठिनता है। इसी प्रकार चाहे जितना अज्ञान हो भगवान उसे हटा देते हैं। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम तेषामेवानुकम्पार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपे न भास्वता। अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश रूप प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। इसलिए प्रार्थना करना यह भी एक मार्ग है और प्रयत्न के द्वारा हटा देना यह भी एक मार्ग है। ज्ञाने न तो तदज्ञानम तेषाम ज्ञानम तेषाम येषाम दाशितम आत्मनः तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। दोनों का फल एक है, क्योंकि परमात्मा सब जगह मौजूद है, उसकी खोज करनी चाहिए। वो पद गाओ।
रा रा मोकू का पर ढूंढे बंदा मैं तो तेरे पास में। मोकू का पर ढूंढे बंदा मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में। ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में। पूरी द्वारिका हम नहीं रहते, पूरी द्वारिका हम नहीं रहते, क्यों फिरता तलाश में। मोकू का पर ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोकू का पर ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ना बस्ती में ना जंगल में ना गुफा के निवास में। ना बस्ती में ना जंगल में में गुफा निवास में पवन तेज पृथ्वी में नाही पवन तेज पृथ्वी में नाही जल बल के आकाश में पवन तेज पृथ्वी में नाही नहीं जल आकाश में मुकू का पर ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में मुकू का पे ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में मूर्ख को मैं मिलता नाही मेरे भक्त का दास में मूर्ख को मैं मिलता नाही मेरे भक्त का दास में बचन हमारा सत कर मानो बचन हमारा सत कर मानो मैं बसता विश्वास में मोकू का पर ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में मोकू का पे ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में मोकू का पे ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में गला पराया जो नर काटे सुन तू कहता मैं खास में गला पराया जो नर काटे सुन कहता अब खास में उसे दर्श स्वप्ने में नाही उसे दर्श स्वप्ने में नाही बसे नरक के वास में मोकू का पे ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में मोकू का पे ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में मेरे अंश से जीव बने सब मत हो राजी मांस में मेरे अंश से जीव बने सब मत हो राजी मांस में बदला बेर छूटत नाही बदला बेर छूटत नाही क्यों मिलता है नास में मोकू का पे ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में मोकू का पे ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में मोकू का पे ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में ना मैं मुंड मुंडाए मिलता ना तीर्थ के वास में ना मैं मुंड मुंडाए मिलता ना तीर्थ के वास मेरे भाई ना तीर्थ के वास में योगी यज्ञ जप तप में नाही योगी यज्ञ जप तप में नाही नहीं व्रत उपवास में मोकू का पे ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में मोकू का पे ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में मारो तो या मन को मारो मोई सुमर लो श्वास में मारो तो या मन को मारो मोई सुमर लो श्वास में गगन मंडल में कुटी हमारी गगन मंडल में कुटी हमारी जिलमिल ज्योति आभास में मोकू का पे ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में मोकू का पे ढूंढे रे ढूंढे मैं तो तेरे पास में कर साधन सिद्धाई साधो चाहो उड़ो आकाश में कर साधन सिद्धाई साधो चाहे उड़ो आकाश में कैत कबीर सुनो भाई साधो कैत कबीर सुनो भाई साधो जो को जे कोई जाश में मोकू का पे ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में मोकू का पे ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में मोकू का पे ढूंढे रे ढूंढे मैं तो तेरे पास में।
कीर्तन
श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय।
हनुमान जी का कीर्तन है। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय।